हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मैं कसम खाती हूँ, मैं नैना ओबेरॉय की वो हालत करूँगी कि जिस तरह आपको उसका नाम सुनकर या उसे देखकर रोना आता है, उसी तरह एक दिन आपका नाम सुनकर दुनिया कांपेगी। मैं वादा करती हूँ, नैना ओबेरॉय आपका नाम लेने से पहले 100 बार सोचेगी। ये बोलकर झलक तुरंत वहां से बाहर निकल गई। अब तो झलक की इस तरह की बात सुनकर दादा पूरी तरह से दंग रह गए थे। वे मन ही मन सोचने लगे थे कि आखिर अब झलक क्या करने वाली है, लेकिन अब उसे रोक पाना भी उनके लिए मुमकिन नहीं था। वैसे भी दादाजी अच्छी तरह जानते थे कि उन्होंने झलक को किस तरह से ट्रेन किया है। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि उनकी पोती शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है और अब किसी का भी मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं दूसरी ओर अनामिका के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। वो सोचने लगी थी कि कहीं झलक ने वापस जाने का फैसला तो नहीं कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वहां से सीधे लॉकेट लेने के लिए खुराना मेंशन ही चली जाए, क्योंकि झलक ने खुद कहा था कि बहुत जल्द वो लॉकेट लेकर आएगी। आखिर झलक क्या करने की कोशिश कर रही है, ये मुझे हर हाल में पता लगाना होगा। अनामिका के मन में एक के बाद एक कई सवाल उमड़ रहे थे। बिना समय गवाए वो फटाफट झलक के पीछे पीछे चल पड़ी। वहीं दूसरी ओर गुस्से से भरकर आदित्य राणा बिना कुछ बोले सीधा कबीर के पास गया। कबीर ने उसे बात करने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वो सीधा छोटे से ड्रिंक बार के पास खड़ा हो गया और लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक पीने लगा। इतना ही नहीं, गुस्से में उसने कुछ बोतलें भी तोड़ दीं। आदित्य को इस हालत में देखकर कबीर के हैरान होने का कोई ठिकाना नहीं था। आदित्य हमेशा खुद को जितना हो सके उतना शांत रखता था। वो किसी भी बात पर जल्दी रिएक्ट नहीं करता था, लेकिन आज उसका यह बदला हुआ स्वभाव वाकई चौंकाने वाला था। आखिरकार कबीर ने उससे पूछा, क्या हुआ आदित्य, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? आखिर हुआ क्या है तुम्हारे साथ? कौन सी बात तुम्हें इतना ज्यादा इफेक्ट कर रही है? कबीर को देखते हुए आदित्य गुस्से में बोला, वो समझती क्या है अपने आप को? जो मन में आएगा वही बोल देगी। क्या उसे किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं है? आखिर वो खुद को समझती क्या है? आदित्य लगातार एक ही बात दोहराए जा रहा था और नशे की हालत में बड़बड़ाता जा रहा था। कबीर ने कई बार कोशिश की कि समझ सके कि आखिर वो किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन आदित्य एक बार भी झलक का नाम नहीं ले पाया। कुछ ही देर बाद वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गया। वहीं दूसरी ओर ओबेरॉय परिवार में माहौल गंभीर था। नैना दादी और रणविजय के सामने बैठी हुई थी। उसने साफ साफ कहा था कि वो अपनी बेटी की शादी में बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहती। वैसे भी उनका बेटा अपनी यूरोप ट्रिप से जल्दी ही वापस आने वाला था, इसीलिए वे चाहते थे कि उसके आने के 2 दिन बाद ही आकांक्षा की शादी कर दी जाए। शादी वे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना चाहते थे, बिना किसी मीडिया और भीड़भाड़ के। ये सुनकर दादी चौंक गईं और बोली, लेकिन नैना जी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे शहर की नजरें आकांक्षा और सिद्धार्थ की सगाई और शादी पर टिकी हुई हैं। सभी लोग इस शादी को लेकर बातें कर रहे हैं। हमें अपने खास खास लोगों को तो बुलाना ही होगा, और मीडिया को चाहे हम कितनी भी दूरी पर रखने की कोशिश कर लें, खबर कहीं ना कहीं से बाहर आ ही जाती है। इसीलिए मीडिया को भी बुलाना होगा। आखिर हम अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, कोई चोरी छिपे काम नहीं कर रहे, थोड़ा रुक कर दादी ने आगे कहा। और वैसे भी एक बार हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। हम झलक के पहचान जाने बिना ही उसे सिद्धार्थ की जिंदगी में ले आए थे, लेकिन इस बार हम कोई गलती नहीं करना चाहते। इतना कहकर दादी ने पूरे दिल के दर्द के साथ सिद्धार्थ और आकांक्षा की शादी का फैसला ले लिया। तभी रणविजय भी दादी की बात का समर्थन करते हुए बोला, दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और वैसे भी मेरे भाई की शादी है तो भव्य शादी तो बनती ही है। हम इतनी नॉर्मल और सादी शादी क्यों करेंगे? आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर वो नैना ओबेरॉय की तरफ देख कर बोला, मिस नैना ओबेरॉय, आपके बारे में यहाँ कोई भी गलत नहीं सोच रहा। आपके साथ जो हुआ वो गलत था। आपने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, इसीलिए आपको परेशान होने या कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर ओबेरॉय बोले, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम भी अब बिना ज्यादा देर किए जल्द से जल्द शादी करेंगे, क्योंकि हम ज्यादा दिन टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। इस पर नैना बोली, जी हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। वैसे भी आकांक्षा ने तो पहले से ही सिद्धार्थ के साथ ऑफिस में काम करने का फैसला किया है। वे देर रात में वहीं से साथ में आते हैं। शादी के बाद भी दोनों साथ में ऑफिस जाएंगे और साथ में ही वापस आएंगे। इस तरह वे अपने घर का फैमिली बिजनेस भी अच्छे से संभाल लेंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी।
जैसे ही नैना ने आगे बढ़कर इस तरह की बातें की, दादी तुरंत उसकी बातों को और बढ़ावा देते हुए बोली थी, हाँ हाँ बिल्कुल, और वैसे भी अब आकांक्षा हमारे परिवार का हिस्सा है, हम अपने हिस्से के शेयर भी उसके नाम कर देंगे, जिससे वो पूरी तरीके से खुराना इंडस्ट्रीज की पावर का हिस्सा बन जाएगी। ये सुनकर नैना का दिल किया कि वो खुशी से आगे बढ़कर दादी के हाथों को चूम ले, लेकिन जैसे तैसे उसने खुद पर कंट्रोल रखा और संयम से बोली, ठीक है तो फिर पंडित जी को बुलाकर कोई एक ग्रेट और फाइनल डेट तय कर लीजिए और इसी हफ्ते से जितनी जल्दी हो सके शादी करा दीजिए। ये सुनकर उर्वशी भी बोली, ठीक है, आप लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वैसे भी अब हम इसी हफ्ते उन दोनों की शादी करवा देंगे। ये सारी बातें पास में खड़े हुए क्लर्क ने सुन ली थी। उसने तुरंत ये खबर दूसरे को बताई, दूसरे ने तीसरे को, और इसी तरीके से ये खबर पहले पूरे घर में फैल गई, लेकिन धीरे धीरे ये खबर घर की चारदीवारी से बाहर भी निकल चुकी थी। पूरे शहर में लगभग आग की तरह ये खबर फैल गई थी कि इसी वीकेंड आकांक्षा और सिद्धार्थ की शादी होने वाली है। सिद्धार्थ ने भी इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, वो भी अब जाकर शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वैसे भी वो झलक को पूरी तरह से भुलाना चाहता था और उसे लगता था कि उसका रास्ता आकांक्षा से होकर ही गुजरता है। उसने मन ही मन सोचा कि जब उसकी शादी आकांक्षा से हो जाएगी तो वो झलक को भी भूल जाएगा और धीरे धीरे कम से कम दर्द के साथ अपनी जिंदगी में सेटल हो जाएगा। वैसे भी आकांक्षा हर तरीके से एक परफेक्ट सुघड़ और समाज में सराही जाने वाली ट्रॉफी वाइफ साबित हो सकती थी। इसी सोच के साथ सिद्धार्थ शादी के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। वहीं दूसरी ओर अनामिका ने जैसे ही सिद्धार्थ की शादी की खबर पढ़ी, वो पूरी तरह से हैरानी में डूब गई। गुस्से से बड़बड़ाते हुए वो बोली, कितनी जल्दी है इस सन की इंसान को, एक बार फिर से शादी करने के चक्कर में इसने झलक की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। वो आगे बोलती चली गई, इसी इंसान ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की और सभी लोगों को यही लगा कि झलक ने अस्पताल में ही सुसाइड कर लिया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। असल में ना तो झलक को कोई खास बीमारी थी, ना ही उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था, फिर इस तरह अचानक उसकी मौत कैसे हो सकती थी। लोगों ने अपने अपने हिसाब से कहानियां बना ली थी और अपने अपने अंदाज में इस खबर को आगे बढ़ा दिया था। वहीं आर्यन को भी लगता था कि झलक ने बहुत कुछ तबाह कर रखा था और आखिरकार वो टूट गया। फिलहाल सिद्धार्थ की शादी की खबर सुनकर उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो चाहकर भी किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था।
उसने अपने दिल की सारी फीलिंग्स दबा कर रख ली थी, क्योंकि उसने अपने पिता से वादा किया था कि वो वही करेगा जो वे कहेंगे। वो अब अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे परिवार किसी मुसीबत में पड़ जाए। धीरे धीरे उसने एक बार फिर से सारी जिम्मेदारियां अपने हाथों में थाम ली थी। उसने खुद ही सभी अमीर और खास परिवारों को शादी के कार्ड बांटने और डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए थे। आकांक्षा की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, उसके पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। जैसे ही नैना ने उसे शादी के बारे में बताया और ये खबर दी कि इसी हफ्ते उसकी और सिद्धार्थ की शादी होने वाली है, उसकी खुशी कई गुना बढ़ गई थी। हालांकि उस वक्त आकांक्षा सिद्धार्थ के ऑफिस में ही उसके साथ मौजूद थी। उसने फैसला लिया कि आज शाम वो सिद्धार्थ के साथ होटल में समय बिताएगी और डिनर भी साथ में करेगी। सिद्धार्थ ने भी इस बात के लिए हामी भर दी थी। आकांक्षा घर जाने ही वाली थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे रोक लिया और कहा कि वे दोनों यहीं से एक साथ चलेंगे। कहीं ना कहीं आकांक्षा को ये बात बहुत अच्छी लग रही थी कि अब सिद्धार्थ उसके बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा है, इसीलिए उसने घर जाने की जिद भी नहीं की, क्योंकि सिद्धार्थ के ऑफिस में पहले से ही काफी सारे डिजाइनर कपड़े मौजूद रहते थे। आकांक्षा ने वहीं पास जाकर डिजाइनर के शानदार कलेक्शन में से कुछ कपड़े चुने, उन्हें वहीं चेंज किया और तैयार होकर सिद्धार्थ के आने का इंतजार करने लगी। तभी